Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
ये केवल मनुष्य के ही जीवन में नहीं, आपको पशु के जीवन में भी मालूम पड़ता है. पशु के जीवन में भी वो वैराग्य दिखाई देता है. आप कभी प्रयोग करना. जो लोग चूहा पकड़ते हैं उनको मालूम हो गए. आप पिंजरा रखते हैं और उस पिंजरे में खाने की कोई चीज रखते हैं, रोटी रखते हैं, मूंगफली रखते हैं, और जैसे ही चूहा उसके अंदर प्रवेश करता है और वो रोटी को हिलाने लगता है, वो बंद हो जाता है. आप देखना कभी, वो चूहा तभी तक मूंगफली खाता है, तभी तक वो रोटी खाता है जब तक वो पिंजरा बंद नहीं होता है. और जैसे ही पिंजरा बंद हो जाता है उसका खाना बंद हो जाता है, कितना भी भूखा हो. और वो खाने की चीज उसके लिए कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अब वो चूहा नहीं खाता है. रात भर वो बैठा रहेगा कोने में, वो दुबक करके बैठा रहता है, वो हांफता रहता है. उसको मालूम हो गया कि मैं बंद हो गया हूं. अब वो पिंजरे में बंद हो गया नारायण, आप उसको कितना भी प्रलोभन देना, आप कितनी भी अच्छी चीज उसके अंदर डालना, चूहा नहीं खाएगा. क्योंकि मालूम हो गया मैं बंद हो गया हूं. और बंद होना बहुत खतरनाक है. बंद होना कोई अच्छी बात नहीं, बंधन है, पराधीनता है. आप चाहे तो भी हम बाहर नहीं आ सकते हैं, जान भी जा सकती है, पिंजरे वाला आदमी मार भी तो सकता है. अब नहीं खाएगा, मालूम हो गया. ये मालूम होने का प्रभाव है, ज्ञान का प्रभाव है, निवृत्ति. ज्ञान का प्रभाव निवृत्ति है. जब तक उसको मालूम नहीं होता तब तक खाता रहता है. ऐसे मालूम पड़ा, कामना, विकार, जलन, घृणा, ईर्ष्या, प्रतिशोध, ये सारी चीजें हमारे जीवन में बहुत दुखद हैं. मालूम हो गई तो मालूम होने के बाद वो हमारा आचरण नहीं बन सकती है. और मालूम होने के बाद भी हम वही के वही हैं, वही के वही करते जा रहे. इसका मतलब अभी मालूम नहीं है. जिसको मालूम होना करे वो मालूम होना नहीं, एक नहीं मालूम होने का हिस्सा है, अज्ञान का हिस्सा है. हम अज्ञान को ही ज्ञान समझ रहे हैं. जैसे भागवत का एक उदाहरण, बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण. ग्वाल बाल अघासुर को देखते हैं और अघासुर के उस मुख को समझ के आ रहे हैं. बड़ी मजेदार बात है. वो सच्चा जो सर्प है उसको भी सच्चा नहीं समझ रहे हैं. सच्चे सर्प के मुख को, अजगर के मुख को वो गुफा समझ रहे हैं. और गुफा समझकर प्रवेश कर रहे हैं, आपस में विचार कर रहे हैं ग्वाल बाल. जो प्रवेश करते हैं वो उनका ज्ञान था क्या अज्ञान था? उनकी जो समझ थी वो ज्ञानात्मक थी कि अज्ञानात्मक थी? वो समझ रहे थे कि हम समझ रहे हैं ये गुफा बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर गुफा है. और वो उत्प्रेक्षाएं भी कर रहे थे. कितनी सुंदर उत्प्रेक्षाएं की उन्होंने. अजगर के मुख को देखा और सोचने लगे, वाह इस जंगल में कितनी सुंदर गुफा है, कितनी सुंदर गुफा. और ये अजगर का मुख मालूम पड़ रही है उल्टी है अजगर का मुख. और वो सोच रहे, देखो कितनी सुंदर गुफा है. और ये गुफा कैसी मालूम पड़ रही है? अजगर का मुख. और उसकी जीभ को देख के सोच रहे थे, वाह इस गुफा के अंदर जाने के लिए रास्ता भी बना हुआ है. और अजगर के जीभ की तरह मालूम पड़ता है. छोटी छोटी अंदर पहाड़ियां हैं, वो सोच रहे थे कि अजगर के दांत मालूम पड़ते हैं। अब उसको आप क्या बोलेंगे? है अज्ञान, लेकिन वो समझ रही थे ज्ञान। हमारी जीवन में भी ऐसे ही है, हम समझते हैं क्रोध करना बुरा है, कौन नहीं समझता है, लेकिन उस समझने को समझना बोलते हैं कि नहीं समझना। मरने का कितने को पता है? हमको मरना है, सबको मालूम है कि हम मरेंगे, लेकिन बुद्ध को भी मालूम पड़ा मरना है, बुद्ध को भी मालूम पड़ा मरना है। एक बड़ी सुंदर घटना है, उड़िया बाबा जी महाराज के पास के कोई आदमी आया और उन्होंने कहा कि बाबा अमुक आदमी को मैं मार डालूंगा, उन्होंने मेरा बहुत नुकसान किया है, और बोले अब भी मैं उसको मारने के लिए जा रहा हूं। बाबा ने कहा किसको मारने के लिए जा रहा है? उसको, अरे वो तो परसों मरने वाला है, परसों मरने वाला है, वो अपने आप मरने वाला है, और तुम उसको मार के तुम निमित्त क्यों बनना चाहते हो? अपने आप मर जाएगा, परसों मरेगा। उस पर भरोसा था बाबा की, बहुत भरोसा था उसका। बाबा को पूछा आप सच्चा बोल रहे हैं कि वो मरेगा? हां, बाबा ने बोला मरेगा, परसों मरेगा वो। वो आदमी बहुत खुश हो गया, सोचा कि चलो बल्ला टल गई, जब वो मरने वाला है तो मेरे को क्या मारना। वो प्रतीक्षा करने लगा, परसों कब आए, परसों कब आए। परसों आया, आदमी मरा नहीं, बाबा के पास भागा भागा आया। अरे बोले बाबा वो तो मरा नहीं, आपने तो बोला था वो परसों मरने वाला है। बोले परसों खत्म हो गया, एक दिन ज्यादा हो गया। बाबा ने कहा फिर परसों मरेगा वो। बाबा ने कहा कि भैया तुम्हारे अंदर इतना आवेग था मारने का, मैं समझ गया कि इस समय तुम मार दोगे, तुम्हारे आवेग को कम करने के लिए हमने बोला, लेकिन वो मरेगा। इस दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो आज अमर हो? बोले मरेगा, आज नहीं तो कल मरेगा वो, सत्य है। मालूम हो जाए हमें मरना है तो नारायण हम असत्य का आचरण नहीं कर सकते हैं। बुद्ध को मालूम पड़ा, बुद्ध को मालूम पड़ा कि मरना अनिवार्य सत्य है जीवन का। बुद्ध को मालूम पड़ा बीमारी जीवन का अनिवार्य सत्य है, बुढ़ापा जीवन का अनिवार्य सत्य है। हमें मालूम नहीं पड़ता है बुढ़ापा, अस्वस्थता मालूम नहीं पड़ती। जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम आनंद मनाते हैं, हम विकारों में जीते हैं, हम संसार के भोग्य पदार्थों में जीते हैं, जलन घृण ईर्ष्याओं में जीते हैं, और उसके बाद फिर हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा अहंकार फिर टूटने लगता है। हमें मालूम है हम बीमार पड़ेंगे, कई बार बीमार पड़ चुके हैं, हमें मालूम है बूढ़े होंगे, हम बूढ़े भी हो रहे हैं। बुढ़ापे की सारी निशानियां हमारे जीवन में दिखाई देने लगी, हम मरेंगे ये भी मालूम है, लेकिन हम कितने लोग हैं जो मरने की तैयारी करते हैं? मरने की कोई तैयारी नहीं, ये तैयारी होती, सोने की तैयारी करते हैं कि नहीं, खाने की तैयारी करते हैं, हम बहुत सारी तैयारी करते हैं, बिना तैयारी हमारा कुछ भी नहीं होता है। आप सत्संग में भी आते हैं तो सत्संग में आने की तैयारी करते हैं, आपको क्या ले जाना है कैसे जाना है वो सारी तैयारी करते हैं, लेकिन मरने की तैयारी किसी की है? कोई तैयारी नहीं। मरने की तैयारी का मतलब समझते हो कि नहीं? मरने का सामान जुटाना नहीं है। मरने की तैयारी का अर्थ ये नहीं है कि कहां मरना है, कौन सी लकड़ियां होगी जलाने के लिए। आज तक मैंने ऐसा आदमी मधुबाबू सुना नहीं कि जिन्होंने अपने मरने की सामग्री खरीद कर रखी हुई। जगह तय की होगी, क्यों गिरीश भाई? आदमी जगह तो तय कर लेता होगा, बहुत सारे लोगों ने जगह तय की, समाधि की जगह तय की, लेकिन आज तक ऐसा आदमी मैंने सुना नहीं जिन्होंने कफन अपना खरीद के रखा हो। अपने को जलाने के लिए लकड़ियां खरीद करके रखी हो, ऐसा आदमी हमने नहीं देखा। मरने की तैयारी का अर्थ केवल ये नहीं है, मरने की तैयारी का अर्थ है मरने के पहले जो मनुष्य जीवन की जो सार्थकता, मनुष्य होने की जो सार्थकता, उसको करना, उसको जीवन में अपनाना। मनुष्य होने का स्वभाव, मनुष्यता को निर्मित करना, ये तैयारी है। जैसे किसान तैयार करता है, खेत तैयार करता है बोने के लिए, ऐसे अपने जीवन को तैयार करना परमार्थ के लिए। सत्य का पता हमें सत्य के अनुष्ठान में ले जाता है, सत्य की प्रवृत्ति में ले जाता है, और असत्य का पता हमें असत्य से निवृत्त करता है, वहां से उपरति की ओर ले जाता है। ये ज्ञान का स्वभाव है। इसलिए बालक नचिकेता के लिए आचार्य यम ने कहा, तो संपरित्य विविनक्ति धीराहा। लेकिन धीर शब्द का प्रयोग किया, बोले कोई कोई ज्ञान को आचरण बना लेते हैं, उसके लिए बहुत धैर्य की जरूरत है। बोले क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। ये जो अध्यात्म का मार्ग, वैराग्य का मार्ग है, छोड़ने का मार्ग है, सत्य को पकड़ने का, जीवन में धारण करने का मार्ग है, इसलिए बोले ये बहुत कठिन मार्ग है। बहुत अध्यात्म का मार्ग कठिन मार्ग है, इसलिए ये धैर्य की आवश्यकता है। यहां कि मार्ग कैसे हैं, एक महात्मा है वृंदावन में, बहुत सिद्ध पुरुष माने जाते हैं, अक्सर एक दृष्टांत देते हैं, और हम साधक भी उस दृष्टांत को हमारे अपने जीवन में अनुभव करते हैं। वो कहते कि अध्यात्म का मार्ग कैसे है, जैसे आप कोई नदी पार करना चाहते, और नदी के पार बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा जंगल, और उस जंगल में हिंसक जीव जंतु निवास करते हैं। आप उस पार गए, कोई संभावना नहीं जीवित लौटने की, जीवित रहने की, एकमात्र पुल है, और उस नदी के अंदर बहुत हिंसक जंतु, मगरमच्छ आदि हैं। आपने पैर रखा कि मगरमच्छ आपको पकड़ लेगा। आपने नदी को पार किया, एक छोटा सा पुल था, और जैसे उस पार गए और वो पुल टूट गया, आपने जैसे ही उस पार कदम रखा और इधर पुल टूट गया, आप बताइए आपकी स्थिति क्या होगी? आगे नहीं बढ़ सकते, भयंकर जंगल है, और जंगल में भयंकर हिंसक जीव जंतु, नदी में उतर नहीं सकते, वापस लौट नहीं सकते, वापस लौटने का पुल टूट चुका है, आगे बढ़ने के रास्ते बंद हैं, बहुत खतरे हैं, पानी में आप उतर नहीं सकते, आपका जीवन क्या होगा? आप मीरा को पूछना, आप तुलसीदास जी को पूछना, आप सूरदास जी को पूछना, बात वही है। आप मीरा को पूछना, आगे बढ़ने का कोई रास्ता मालूम नहीं पड़ रहा है, और हम पीछे संसार में लौट नहीं सकते हैं। साधक का जीवन ऐसा होता है, एक बार घर छोड़ चुका है, वो वासनाओं का त्याग कर चुका है, अब लौटने का कोई उपाय नहीं है, पीछे लौटने का कोई उपाय नहीं, और आगे बहुत सारे खतरे मालूम पड़ते हैं, कामना, विकार, जलन, घृणा, ईर्ष्या, अभी पूरे तौर पर उसका त्याग नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें सामने प्रकट है, ये कामादि विकार बहुत बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु की तरह है, कहां कब वो निगल जाए, कब हमारे जीवन में प्रवेश कर हमारे जीवन को समाप्त कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए तुकाराम महाराज जी ने एक वाक्य में लिखा, अरे बोले दिन रात हम युद्ध करते हैं, युद्ध ऐसा बोला, और वो युद्ध बाहर का दुनिया के लोगों के साथ और अंदर का मन के साथ। और मीरा को पूछना, घर जाएंगे? बोले नहीं। बोले पूरा आप घर छोड़ के बाहर रहेंगे? बोले नहीं, छोड़ भी नहीं सकते, कहां जाए, और घर में रह भी नहीं सकते। मीरा की स्थिति बहुत विचित्र है, सब कुछ छोड़ के कहां जाए, बाहर में बहुत सारी असुरक्षा है, और आप घर में रहने के लिए बोलो तो घर में भी तो सारी वासनाएं, जलन, घृणा, ये संसार में क्या चलता है। इसलिए मीरा ने कहा, घायल की गति घायल जाने और न जाने को। मीरा ने एक ही शब्द बोला, भैया, बोले मेरे जीवन में क्या दुख है, केवल मैं जानती हूं। पूर्ण वैराग्य, ध्यान देना, ये साधक का जो जीवन है ना, बहुत विचित्र जीवन होता है। साधक का जीवन बहुत विचित्र जीवन होता है। साधक माने अभी पूर्ण वैराग्य नहीं है, जो सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ जाए, और इतनी आसक्ति नहीं है कि जो संसार में रह जाए। जो पूरा अज्ञानी है बहुत खुश है, और जो पूर्ण ज्ञानी है वो भी बहुत खुश है, लेकिन जो बीच वाला है ना, बहुत दुखी है। ये बीच वाला होना बहुत खतरनाक भी है। विदुर जी महाराज जी ने एक बहुत सुंदर बात बोली, यही बात बोली उन्होंने, कहा कि दुनिया में दो ही लोग खुश हैं, जो पूरे के पूरे अज्ञानी है, जिन्हें परमात्मा का कुछ पता नहीं, बहुत खुश है, और वो जिन्होंने परमात्मा को जान लिया, परम ज्ञानी हो गए, वो बोले बहुत खुश हैं। लेकिन बीच वाला बहुत बहुत दुखी, बीच वाले बहुत दुखी हैं। और विदुर जी महाराज जी बोल रहे, मैं भी बीच वाला हूं। मैं आपको पूछता हूं, आप लोग कौन हैं? एक तरफ वासनाएं बोलती है चलो संसार, और जब वासना में जाते तो मन बोलता है अरे क्या इसमें पड़े हुए हो, वासना बोलती क्या इसमें पड़े, इसमें क्या धरा है। और जब हम उधर चले आते हैं, एक मन बोलता है चलो सत्संग, और सत्संग में आने के बाद अरे वो चीज छूट गई, और उधर जाते तो मन लगता अरे ये चीज छूट गई। और यही हमारी जीवन का सर्वोच्च भाव है। गोपीनाथ कविराज जी, उन्होंने कहा कि साधना केवल ऐसे आदमी के लिए, अज्ञानी के लिए साधना नहीं है। जो अज्ञात तत्व वाला है, जिसको मालूम ही नहीं सत्य क्या है, जिसको पता ही नहीं, ऐसे आदमी के लिए साधना नहीं है, और ऐसे आदमी के लिए विकास के कोई अवसर नहीं है। वो जड़ता है, अज्ञान में जड़ता है, जहां का वहीं पड़ा रहेगा, वहां संतोष है, अज्ञान में संतुष्ट है। इसलिए अज्ञानी व्यक्ति में कोई उन्नति नहीं, उन्नति को पाने का कोई पुरुषार्थ नहीं। इसलिए अज्ञानी के लिए न साधना है और न पुरुषार्थ, केवल साधक के लिए। ये बीच का होना ही महत्वपूर्ण है, ये बीच का होना क्रांति है, जीवन की क्रांति है। भगवान ने जो बोला ना, जिज्ञासु, जिज्ञासु होना, जिज्ञासा, ये दुर्लभ बोला है भगवान ने। कहा मनुष्य होना, मुमुक्षु होना और सत्संग का मिलना, ये मनुष्य जीवन में तीन बहुत दुर्लभ है। मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रयः। पहली बात यही है, मनुष्यता माने मनुष्य होना बहुत दुर्लभ घटना है। मनुष्य होने के बाद जिज्ञासु, मुमुक्षु होना बहुत दुर्लभ है, और उसके बाद सत्संग मिलना, महापुरुष का आश्रय मिलना बहुत दुर्लभ है। क्रांति, जीवन की क्रांति है। हमारे जीवन में मुमुक्षुता आ जाए, हमारे जीवन में जिज्ञासा आ जाए। नारायण, इसमें जिज्ञासु में दुख ना हो ना तो कोई क्रांति ना हो, ध्यान देना। यदि दुख ना हो तो हमारा विकास ही ना हो, वेदना ना हो तो हम चुपचाप बैठे रहे। वेदना हमें सक्रिय बना देती है। अभी आप बैठे, आराम से बैठे, लेकिन थोड़ा सा पेट में दर्द होना शुरू हो जाए तो आप धीरे से हमको इशारा कर देंगे, जा रहे हैं, क्यों? अरे मुझे पेट दुख रहा है, डॉक्टर के पास ले जाएगा वो पेट दुखना आपको डॉक्टर के पास ले जाएगा। ये जिज्ञासु की वेदना आपको गुरु के पास ले जाएगी। मन की वेदना, यदि परमात्मा के पाने की वेदना है, संसार के छोड़ने की वेदना है, वो वेदना आपको गुरु की खोज में ले जाएगी। आप खोजेंगे कहां सत्संग है, आपके बगल में भी सत्संग होगा लेकिन आप नहीं जाएंगे। यदि वेदना ना हो, जिज्ञासा ना हो, मुमुक्षुता ना हो, इसलिए जिज्ञासु होना बहुत बड़ी क्रांति है। ये मनुष्य के जीवन की क्रांति है और ये बहुत दुखद बात है। यहां अशांति है और इसीलिए साधक खोजता है उस परमात्मा को। ये जितने भी साधक थे नारायण, आप जितने भी साधकों को देखते हैं उनके जीवन में बहुत बड़ा कष्ट है। इसलिए मीरा ने भी एक चीज बोली, आप घबराना मत, ये बात बोल रहा तो घबराना मत। आदमी सुख की खोज में यहां आता है, मैं बोलू ये तो बड़ा दुखी है, आप सोचेंगे कि भाई चलो इसको भी छोड़ देते हैं। कबीर ने एक बात बड़ी मजेदार बोली, कबीर ने कहा सारी दुनिया खाए और सोए। एक बड़ा दोहा है मजेदार, कबीर जी ने कहा कि सारी दुनिया जो है खाए और सोए, बहुत आनंद में मस्त है, लेकिन एक आदमी दुखी है और वो कौन है? बोले कबीर, न खाए न सोए, न बोले खाने में आनंद और न सोने में आनंद। बोले क्यों? अरे बोले वो परमात्मा की लगन लगी है ना, और वो परमात्मा की लगन न खाने देती है और न सोने देती है। बोले निरंतर मैं उसी का ध्यास, उसी की आस, उसी के बारे में सोचता रहता हूं, वो परमात्मा कब मिलेगा, कब मिलेगा, उसी खबर कब आएगी, जीवन के सारे दुर्गुणों को निकालकर बाहर कब फेंकूंगा मैं। कचरा मालूम पड़ता है, दुर्गुण कचरा मालूम पड़ता है, दुर्गुण नारायण जीवन में बहुत बड़ी गंदगी मालूम पड़ती है, विकार गंदगी मालूम पड़ते हैं। छींची मन में काम आया, छींची जलन जलने लगा, प्रतिशोध आया। एक आम आदमी उसमें आनंद का अनुभव करता है और एक साधक जब इन चीजों को अपने जीवन में देखता है तो नारायण वो बहुत अपने आप में वो फील करता है कि ये जिंदगी में नहीं होना चाहिए हमारे, और उसको निकालने के लिए प्रयास करता है, आयास करता है। इसलिए यहां पर जो बोला विविनक्ति धीरा, ये जिज्ञासु है, धीर जो है वो जिज्ञासु है। विविनक्ति धीरा, श्रेयो ही धीरो अभी प्रेसो वृणीत है, जो धीर जिज्ञासु है साधक है। समझ में ना, श्रेय जो श्रेय तत्व है वो वृणीते उसका वरण करता है, मोक्ष के मार्ग का वरण करता है। और बोले मंदा, जो मंद है, मति मंद, वो व्यक्ति योगक्षेमात प्रेयो वृणीत है, वो खाने भोग विलास की चीजों को ग्रहण कर लेता है। अब वो सत्य कब मिलेगा? चलो गाओ गाओ, खाओ नाचो आनंद मनाओ, ये जो तू बोला ना कबीरदास जी ने, जो खाए और सोए। इसलिए श्रेष्ठ तत्व निवृत्ति मार्ग का ज्ञान ध्यान अभयम सत्व संशुद्धिर, इन संपूर्ण चीजों का जीवन में साधक अपना कर नारायण अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, वही धीर है। आज बालक नचिकेता के लिए परोक्ष रूप से आचार्य यम ने कहा, बेटा तुम बड़े धीर मालूम पड़ते हो, तुम जिज्ञासु मालूम पड़ते हो, न खाए न सोए, परमात्मा को पाने के लिए जग रहे हो। बड़ा सुंदर भाव है। वाणी को विराम, दो मिनट के लिए आप बैठ जाएं सीधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय।
नमः शिवाय। ॐ 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 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।